आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
नमस्कार, शनिवार 18 जुलाई 2026 के मुख्य समाचारों के साथ मैं हूं स्वाति शर्मा। गृह मामलों के मंत्री टोनी बर्क का कहना है कि सरकार पेरेंट वीजा के लंबित मामलों को कम करने पर काम कर रही है, लेकिन इसका कोई आसान समाधान नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स के आंकड़ों के मुताबिक 2024-25 वित्तीय वर्ष में पेरेंट वीजा की लंबित अर्जियों की संख्या 157,000 थी, जो 6 साल पहले यानी 2018-19 वित्तीय वर्ष की तुलना में 52,000 ज्यादा है। हर साल इस वीजा श्रेणी में सिर्फ 8,500 जगहें उपलब्ध होने के कारण कॉन्ट्रीब्यूटरी पेरेंट वीजा के लिए औसत प्रोसेसिंग समय 15 साल जबकि नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेरेंट वीजा के लिए 33 साल है। इस समस्या के समाधान के रूप में 2023 में तत्कालीन गृह मामलों की मंत्री क्लेयर ओनील द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ पैनल ने न्यूजीलैंड और कनाडा की तरह बैलेट या लॉटरी प्रणाली अपनाने की सिफारिश की थी। फेडरल सरकार ने इस्लामोफोबिया से निपटने पर तैयार की गई एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट की 54 में से 35 सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। इन उपायों में राष्ट्रीय स्कूल पाठ्यक्रम की समीक्षा शामिल है ताकि उसमें मुस्लिम ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के योगदान को बेहतर तरीके से शामिल किया जा सके। साथ ही मुसलमानों के बारे में फैलाई जाने वाली गलत जानकारी का मुकाबला करने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। सरकार ने मस्जिदों, इस्लामिक स्कूलों और अन्य मुस्लिम धार्मिक संस्थानों की सुरक्षा बेहतर करने के लिए लगभग $42 मिलियन देने की भी घोषणा की है। न्यू साउथ वेल्स के अपर हंटर क्षेत्र में एक घर में घुसकर दो छोटे बच्चों के कथित अपहरण के मामले में 4 लोगों पर आरोप लगाए गए हैं। पुलिस का आरोप है कि 6 जून को ये लोग मसवेल ब्रुक के एक घर में जबरन घुस गए, जहां उन्होंने एक व्यक्ति पर हमला किया और फिर 4 और 7 साल के 2 बच्चों को अपने साथ ले गए। कुछ ही समय बाद दोनों बच्चे सुरक्षित मिल गए। मौके पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि पुलिस जांच के बाद 17 जुलाई को 3 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। इनमें से 3 आरोपी आज अदालत में पेश होंगे, जबकि 4था आरोपी न्यायिक हिरासत में है और अगले महीने अदालत में पेश किया जाएगा। कनाडा में सैकड़ों जंगलों में लगी आग अब भी जारी है। इसके चलते लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है और धुएं की वजह से उत्तरी अमेरिका के बड़े हिस्से में हवा की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। ओंटारियो प्रांत का कहना है कि वहां 191 सक्रिय आग लगी हुई है, जिनमें से कई अब भी नियंत्रण से बाहर हैं। धुएं के कारण अमेरिका के 1 दर्जन से भी ज्यादा राज्यों में वायु गुणवत्ता संबंधी चेतावनी जारी की गई है। इसका असर वाशिंगटन, न्यूयॉर्क और टोरंटो जैसे शहरों में भी देखा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस धुएं के लिए कनाडा को जिम्मेदार ठहराते हुए टैरिफ लगाने की धमकी दी है। हालांकि व्हाइट हाउस ने यह नहीं बताया है कि ऐसे टैरिफ किस तरह लागू किए जाएंगे। चीन के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में हुए भूस्खलन में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है। राहत और बचाव दल अब भी मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटे हैं। चोंगशिंग शहर के पेंगशुई काउंटी में हुए इस भूस्खलन के बाद 34 लोग अब भी लापता हैं और कई घर मलबे में दब गए हैं। अब तक 1100 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और घटनास्थल पर सैकड़ों आपातकालीन कर्मियों को तैनात किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक स्थानीय समुदाय के अधिकारियों ने पहाड़ी से चट्टाने गिरती देख समय रहते दर्जनों लोगों को वहां से निकाल लिया था। इसके कुछ ही देर बाद पूरी पहाड़ी का एक हिस्सा ढह गया। और अब रुक करें भारत का, तो सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक, जो दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 20 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे थे, उन्हें प्रदर्शन स्थल से हटाकर अस्पताल ले जाया गया है। एनडीटीवी से मिले समाचार के अनुसार शनिवार तड़के दिल्ली पुलिस प्रदर्शन स्थल पर पहुंची और वांगचुक को अस्पताल ले गई। रिपोर्टों के मुताबिक उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत स्थिर बताई गई है। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश और विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह के अनुरूप यह कदम उठाया, क्योंकि सोनम वांगचुक की स्वास्थ्य स्थिति लगातार बिगड़ रही थी। हर नागरिक का जीवन बहुमूल्य है, यह कहते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 दिन पहले अधिकारियों को वांगचुक की रोजाना चिकित्सीय जांच कराने और जरूरत पड़ने पर तत्काल इलाज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। शुक्रवार को वांगचुक की जांच करने वाले डॉक्टरों ने उनकी स्थिति को मेडिकल इमरजेंसी बताया था और आशंका जताई थी कि उनके अंग काम करना बंद कर सकते हैं। 59 वर्षीय सोनम वांगचुक कथित नीट पेपर लीक मामले को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए अनशन पर थे। आज के लिए मुख्य समाचारों में बस इतना ही. अन्य खबरों और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए SBS हिंदी के साथ हमारी वेबसाइट sbs.com.au/hindi पर. धन्यवाद.
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद. हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं.